श्लोक संख्या 10 अध्याय 3 सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोऽस्त्विष्ट कामधु सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इससे इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य अध्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक। सृष्टि के आरंभ से समस्त प्राणियों के स्वामी कौन है? समस्त प्राणियों के स्वामी श्री विष्णु। समस्त प्राणियों के स्वामी ने समस्त प्राणियों के स्वामी के लिए क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ सहित क्या हुआ? उस यज्ञ को भी रचा और यज्ञ के साथ मनुष्य प्राणियों को भी रचा और उनसे कहा, किनसे? तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। सारी फैसिलिटी दे दी है, केवल एक चीज बना के छोड़ दिया ऐसा नहीं किया है ना। संपूर्ण सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है भगवान ने। नवे अध्याय में भगवान ने कहा था, क्या कहा था? क्या कहा था 3.9 में? कौन से? यज्ञ कर्म करना चाहिए। 3.9 में भगवान ने कहा था यज्ञ कर्म करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं यज्ञ कर्म, इसकी चर्चा हुई थी। अन्यथा यदि यज्ञ कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? कर्म बंधन में फंस सकते हैं, कर्म बंधन में फंस जाए। तो कैसे समझेंगे हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं या कोई क्या कर रहा है, कैसे समझे? पिछले श्लोक में कहा है भगवान ने, यदि ऐसा नहीं करोगे, यज्ञ कर्म नहीं करोगे तो बंधन में फंस जाओगे। पर हम कर रहे हैं क्या यज्ञ कर्म, या कोई कर रहा है क्या यज्ञ कर्म, या कैसे समझेंगे? तो उसके स्तर है। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। और इंद्रिय तृप्ति कैसी? अनलिमिटेड, अमर्याद, कोई सीमा ही नहीं है। बस उसके मन में वही है कि किस प्रकार से एंजॉय करूं। कौन सी एंजॉयमेंट? शारीरिक सुख बस। तो वो व्यक्ति कहा जाता है, वो व्यक्ति कौन सा जीवन जी रहा है? वो व्यक्ति जी रहा है एनिमलिस्टिक लाइफ, पशु जीवन जी रहा है। क्योंकि पशु क्या करते हैं? उनके शारीरिक सुख के लिए जो कुछ करना पड़ता है उतना ही करते हैं। शरीर को सुखी रखने के लिए, शरीर को, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी करना होता है उतना ही कार्य कौन करते हैं? पशु करते हैं। और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कर्म करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है क्या? केवल इंद्रिय तृप्ति, केवल सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो व्यक्ति किस प्रकार के जीवन के स्तर पे है? पशु जीवन, एनिमलिस्टिक लाइफ। फिर उसके ऊपर जो होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति में तो रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति तो करते हैं, सुख भोग तो, सुख का तो भोग करते हैं, शारीरिक सुख की लालसा रहती है, परंतु रेगुलेटेड रहते हैं, एक नियम से करते हैं। इंद्रिय तृप्ति है परंतु कैसे करते हैं? नियम से करते हैं। उनको कौन किस प्रकार का जीवन जीते हैं? वो उसको उनको कहते हैं वो कर्मकांड के स्तर पे। कौन से स्तर पे? कर्मकांड के स्तर पे। कहते हैं क्या भाई? एकादशी है, उस दिन उपवास करना चाहिए, उस दिन चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, उस दिन अनेकों जो अशौच अशुद्ध बातें हैं वो नहीं करना चाहिए। फिर बहुत से लोग बहुत से दिनों को मानते हैं, कोई गुरुवार को करता है, कोई अनेकों वार को करता है। अर्थात डिजायर्स है, सेंस एंजॉयमेंट चाहते हैं, सुख को भोगना चाहते हैं, परंतु स्टाइल क्या है? रेगुलेटेड है, थोड़ा रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको रेगुलेट किया, अमर्याद नहीं है। तो स्तर कौन सा हुआ? कर्मकांड का स्तर। उसके ऊपर का स्तर कौन सा हुआ? उसके ऊपर का स्तर है सकाम कर्म। पहला स्तर क्या है? पशु जीवन। दूसरा स्तर क्या है? कर्मकांड, मतलब पशु जीवन अर्थात अनलिमिटेड डिजायर्स एंड सेंस एंजॉयमेंट। देन दूसरा स्तर क्या है? मर्यादित इच्छाएं, नियमित जीवन, रेगुलेटेड लाइफ। तीसरा स्तर क्या है? उसके ऊपर का है, देखिए ऊपर ऊपर चल रहे हैं। उसके ऊपर का स्तर है सकाम कर्म, अर्थात ये डिवोटीज होते हैं, ये भक्त होते हैं, परंतु कुछ प्राप्त करने की इच्छा इनमें रहती है, भगवान से, भगवान से मांगते हैं, डिवोटीज विथ मटेरियल डिजायर। भक्त होते हैं परंतु भौतिक कामनाएं रहती है, है ना। वो स्तर क्या हुआ? सकाम कर्म। और उसके भी ऊपर क्या है? निष्काम कर्म, सेल्फलेस डिवोटी, निस्वार्थ कर्म करते हैं, कुछ मांगते ही नहीं है भगवान से, भगवान के नाम का केवल जप करते हैं और भगवान को कहते हैं तुमको क्या समझ में नहीं आता है मुझे क्या चाहिए? जो देना है वो दो, मैं क्यों मांगू? तुमको समझ में आना चाहिए, जो देना है तुम्हारी इच्छा दो, जो नहीं देना है मत दो, मुझे कोई काम। सकाम, निष्काम, सकाम नहीं निष्काम, कोई काम नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं। भगवान आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो, प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हो, क्या आप जानते नहीं हो किसको क्या चाहिए? चींटी से लेके ब्रह्मा तक आप सबका पालन पोषण करते हो, क्या मुझे क्या चाहिए आप जानते नहीं हो? और जानकर भी यदि नहीं देते हो तो आपकी इच्छा, मैं कौन होता हूं आपको मांगने वाला। इस भाव से जो भगवान को प्रार्थना केवल भगवान का नाम जप करते हैं वो क्या है, सेल्फलेस डिवोटी, निष्काम भक्ति करते हैं, साधन भक्ति कहते हैं इसको, निष्काम भक्ति करते हैं। और फिर निष्काम भक्ति करते करते और ऊपर के स्तर पे पहुंच जाते हैं, और एक सीढ़ी ऊपर, टॉप मोस्ट लेवल, सर्वोच्च शिखर, स्टेज, स्तर मनुष्य जीवन का प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेम, लव, लव ऑफ गॉड, क्या कहते हैं, सबसे ऊंची है प्रेम, है ना, कोई भजन है या कोई गाना है ऐसा, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, है कि नहीं, सबसे ऊंची, प्रेम से ऊपर कोई धर्म है, भगवान कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति है, भगवान कृष्ण राधा कृष्ण युगल रूप प्रेम की साक्षात मूर्ति है, तो सबसे ऊंचा स्तर क्या है, प्रेम भक्ति भाव भक्ति, इस स्तर पे व्यक्ति केवल एक ही बात जानता है, प्रेम करना है बस। जो भगवान से प्रेम करेगा क्या इस संसार में किसी दूसरे से बैर कर सकता है, कर सकता है, और यदि मान लो किसी से उसका बैर है तो क्या वो भगवान से प्रेम कर सकता है, हैंस फ्रूट। भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान के प्रेम में जो लिप्त है, नित्य प्रेमी है भगवान का, क्या इस संसार की किसी व्यक्ति से वो द्वेष कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। और जो इस संसार में किसी से भी द्वेष करता है तो क्या वो भगवान से प्रेम कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम करने का जो स्तर है वो सर्वोच्च स्तर है, उस स्तर तक जाने के लिए यज्ञ कर्म करना होगा, और यदि वैसे कर्म नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। 3.9 में भगवान ने इसके पहले श्लोक में कहा है, यदि इस प्रकार से यज्ञ कर्म नहीं करते हो, यज्ञ कर्म नहीं करोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे, और कर्म बंधन में कौन फंसना चाहेगा, फंसना चाहेगा। इस घटना को पुष्ट करने के लिए, मतलब इस सृष्टि की जो शुरुआत की घटनाएं हैं, जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस घटना को यदि हम समझे ध्यान से, तो सृष्टि का निर्माण बिल्कुल ठीक उसी तरह से हुआ है जिस तरह हम किसी मशीन का निर्माण करते हैं, लेकिन मशीन का निर्माण करते हैं, किस लिए मशीन का निर्माण करते हैं, मशीन का निर्माण क्या होता है, मशीन इसलिए निर्माण करते हैं कि वो अधिक सुख सुविधा दे, है ना। कोई काम मैन्युअली किया जाता है तो उसमें उतना परफेक्शन नहीं होता है, सुविधाएं नहीं होती है, और कोई काम मशीन से किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सुविधाएं, सुविधाएं ध्यान में रख के मशीन से काम करवाया जाता है ना। तो मशीन से, मशीन इसलिए बनाई जाती है कि काम करने में सुविधा हो, है ना, इजीली हम अपना कर्म काम कर सके, सुविधा हो काम करने, और ध्यान रहे कि दुर्घटना न घटे, है कि नहीं, मशीन चला रहे दुर्घटना न घटे, दुर्घटना घट गई तो क्या होता है, सीधा हाथ खींच लेती, हाथ कट जाता है, मशीन में काम कर रहे दुर्घटना के, दुर्घटना कब घटेगी बताइए, सावधानी नहीं रहेगी, सावधानी कब नहीं रहेगी, ध्यान और कहीं रहेगा, ध्यान या तो ध्यान और कोई होगा, कहीं और होगा, या मशीन के विषय में जानकारी नहीं होगी, और मशीन की जानकारी किसमें होती है, एक निर्देशिका बुक मैनुअल होता है ना, होता है ना, मैनुअल में पूरी जानकारी होती है, यदि मैनुअल नहीं पढ़ा और मशीन को चलाने लग गए तो दुर्घटना हो सकती है, होती है। और दुर्घटना में क्या हो जाता है, हाथ कट जाता है, कट जाता है हाथ, अंग कट जाते हैं। ये अंग न कटे इसलिए मैनुअल बनाया गया है। मैनुअल को अच्छे से पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो, ध्यान से उसको उस फंक्शन को समझो और कर्म कार्य करो अपने। ठीक उसी तरह इस सृष्टि का निर्माण किया गया है, सृष्टि एक मशीन की तरह है और इसका एक मैनुअल भी बनाया गया है। ये मशीन है, मशीन का उपयोग किस लिए होता है, सुविधा के लिए होता है। सृष्टि का निर्माण हुआ है किस लिए हुआ है, अपने मनुष्यों के सुविधा के लिए हुआ है कि नहीं, मनुष्यों के सारे संसार की सुविधा के लिए इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसका मैनुअल भी है, बराबर है। क्या है मैनुअल, भगवद गीता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मान लो इस मैनुअल को न पढ़ के, पढ़े ही नहीं मैनुअल को, और इस सृष्टि रूपी मशीन को चला रहे, क्या होगा, घटेगी पक्का, सबको पता है दुर्घटना घटेगी। और दुर्घटना घटी तो क्या होता है, हाथ कट जाते हैं। दुर्घटना अर्थात इस सृष्टि को यदि हम नहीं समझते हैं, इस मैनुअल को नहीं समझते हैं, सृष्टि की इस मैनुअल के उपदेशों के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हैं, इस मैनुअल का उपदेश है यज्ञ कर्म करो, यदि यज्ञ कर्म हम नहीं करते हैं तो कर्म बंधन में फंस जाते हैं, हमारे साथ धोखा हो जाता है, अर्थात दुर्घटना हो जाती है, हमारे हाथ कट जाते हैं। कैसे, क्योंकि हम कर्म बंधन में फंस गए, यज्ञ कर्म किया नहीं, क्योंकि मैनुअल में लिखा था यज्ञ कर्म करो परंतु मैनुअल को पढ़ा नहीं, और मैनुअल को नहीं पढ़ने की वजह से, मैनुअल को नहीं पढ़ने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, अर्थात जो कर्म करना चाहिए वो कर्म नहीं किए, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर्म किए और एक्सीडेंट हो गया, कर्म बंधन में फंस गए, और कर्म बंधन में फंसने के कारण अगला जन्म कौन सा मिला, पशु पक्षी का मिला ना, और पशु पक्षी का अगला जन्म मिला। कोई पक्षी कैसे खाता है, डायरेक्ट मुख से खाता है, हाथ है उसको, है पक्षी को हाथ, कोई पशु को पक्षी को हाथ है, डायरेक्ट मुख से खाता है, हाथ कट गए, मशीन में हाथ कट गए और पक्षी बन गए। सृष्टि रूपी मशीन में हाथ कट गए और क्या बन गए, पशु पक्षी बन गए। पशु पक्षियों को हाथ नहीं होता है, डायरेक्ट मुख से खाना पड़ता है, हमने ही हमारे हाथ काट दिए गलती से, मशीन में अटक गए, फंस गए, मैनुअल पढ़ा नहीं, यज्ञ कर्म किए नहीं, पशु का जीवन, पशु के स्तर पे, एनिमलिस्टिक लाइफ के स्तर पे जीवन यापन किया है कि नहीं, तो क्या हो गया, पशु बन गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि हम श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो मशीन की दुर्घटना की तरह सृष्टि दुर्घटना हो सकती है, और हो रही है, हो रही है ना। तो भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं इस श्लोक में भी कि बाबा यज्ञ कर्म करो, अर्थात उपदेशों के अनुसार तुम कर्म करो। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति है सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञों सहित प्रजा की रचना की। भौतिक सृष्टि में अनेक प्रकार की प्रजा है, अनेक प्रकार की प्रजा है भौतिक सृष्टि में। हम तो समझते हैं कि मनुष्य जाति को ही प्रजा बोलते हैं, अभी के युग में, आज के युग में प्रजा किसको समझते हैं, मनुष्य जाति। लेकिन पहले के समय में प्रजा सारे जीव जंतु जितने भी इस सृष्टि में वो सारी प्रजा होती थी, और जो नियम बनते थे इस राज्य के, जो नियम बनते थे वो नियम मनुष्य प्राणी पक्षी पशु सभी के लिए बनते थे। और अभी किसके लिए नियम बनते हैं? केवल नेताओं के लिए, राजाओं के लिए, है कि नहीं? इवन मनुष्यों के लिए भी नहीं बनते हैं, है कि नहीं? इतनी भयंकर दशा है, क्योंकि जो नियम बनाने वाले हैं इनको ट्रेनिंग ही कहां है? पहले के समय में जो राजा बनते थे तो राजा कोई भी नहीं बनता था, वो बाल्यावस्था से एकदम युवावस्था में उनको गुरुकुल में भेजा जाता था, और गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? दान, कैसे दान करना चाहिए, किसको क्यों दान करना चाहिए, तप तपस्या, शुद्धता और सत्य, इसके विषय में सिखाया जाता था। और इसमें जो निष्णात होते थे उसमें से एक को राजा बनाया जाता था, जीवन भर वो ये सब सीखता था। आज के समय में जो राजा लोग हैं, इन राजाओं ने कभी बचपन में दान करना सिखा है? किसी ने सिखाया इनको दान देना? किसी ने सिखाया नहीं, केवल जमा करना। सब कौन है? कलेक्टर है, कलेक्शन करते रहते हैं। दान करना सिखाया ही नहीं तो इस संसार से भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है, बताइए? हो सकता है? अरे सिखाया ही नहीं है भ्रष्टाचार दूर करना बचपन से। भ्रष्टाचार फैलने के चार मूलभूत कारण है कि दान करने की प्रवृत्ति नहीं, सत्य पे आधारित जीवन नहीं, जीवन में शुद्धता बिल्कुल नहीं। शुद्धता अर्थात शुद्धता में दया भाव भी आ गया, किसी के प्रति दया भाव बिल्कुल नहीं। तो ये नहीं होने से किस प्रकार से संसार सुखमय हो सकता है? ये बात कभी किसी ने बताई है इनको? नहीं बताई। तो इसलिए इस संसार में, इस कलयुग के संसार में प्रजा केवल स्वयं को ही समझते हैं, पॉलिटिशियंस राजनेता लोग। बल्कि उस समय में क्या होता था, प्रजा अर्थात सारे जीव जंतु, सारे पशु पक्षी प्राणी मनुष्य। आज की स्थिति में पशुओं का रक्षण करो, नियम बनाओ, कायदे भी बने हैं, बहुत सारे संस्थाएं भी बनी है। क्या कहते हैं पेटा, क्या है उसका, क्या है उसका लॉन्ग नाम, पेट एनिमल्स कुछ ऐसे ही कुछ है, एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए वो है। जो पशु है पक्षी, पशु पक्षी इनके ऊपर दया करो। ये जो कुत्ते हैं, डॉग्स वगैरह, स्ट्रे डॉग्स वगैरह, उनको बचाओ, उनको खाने को दो, बिस्किट्स दो उससे पुण्य मिलता है, और लिखा रहता है दुकान में एक स्लोगन में, चींटियों को खिलाने से कर्ज फिट जाता है, इस टाइप से सब लिखते हैं, कुत्तों को खिलाने से शत्रु मिटते हैं। तो इस प्रकार से लिखा रहता है, लोग इसको खिलाते हैं, और इस प्रकार से संस्थाएं बन जाती है, इन संस्थाओं के हेड भी बन जाते हैं बहुत से वेल नोन प्रसिद्ध लोग, इस संस्था को चलाने वाले रहते हैं। और जहां कहीं भी कुत्तों को मारा जाता है, डॉग्स को शिक्षा दी जाती है, ऐसी जगह तुरंत वो पहुंचते हैं। कोई पशु पक्षी को शिक्षा हो रही है ऐसी जगह वो तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन उनको स्वयं को यदि पूछे, हमने एक कार्यकर्ता ऐसे हम जानते हैं जो हेड है उस एरिया के, उस संस्था के, तो उनसे बातचीत हुई थी, तो उनसे पूछा गया क्या आप वेजिटेरियन हो? बोले नहीं, वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन रक्षा कुत्तों की करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के ऊपर नियंत्रण करने का ट्रेनिंग कभी मिला ही नहीं है, तो जिस भाव से ये सब करते हैं उसमें भी भाव क्या है? अशुद्ध भाव है। तो इसके कारण हम प्रजा को प्रजा नहीं समझते। आज की स्थिति ऐसी है कि प्रजा को समग्र जीव जंतु प्राणी मनुष्य को प्रजा नहीं समझा जाता है, परंतु उस समय सभी को प्रजा समझा जाता था। मनुष्यों को विशेष प्राधान्य दिया जाता था। क्यों? कौन सी बुद्धि है? क्या सोचते हैं? यदि सोचने समझने की बुद्धि होती तो इतना भ्रष्टाचार फैलता? क्या बुद्धि में कौन सा क्या बात है? वो कॉन्शियसनेस तो प्राणियों में भी होती है। मनुष्य जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, और प्राणी जो है वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, वो भोग योनि है। अब सोचिए, इतना ही डिफरेंस है। कर्म बंधन से मनुष्य मुक्त हो सकता है, अर्थात अपने हाथ पैर वो कटवा सकता है, लेकिन कटवाता नहीं यदि वो बुद्धिमान है तो, है ना। सृष्टि घटना, सृष्टि दुर्घटना जो है, इस सृष्टि चक्र में अपने हाथ पैर नहीं काट सकता यदि वो चाहे तो। वो कर्म बंधन में नहीं बसेगा, वो ऐसे कर्म करेगा कि ऊंचे जीवन को प्राप्त करेगा, परंतु वैसा करता नहीं है, वो दुर्भाग्य की बात है। परंतु उस समय मनुष्य को प्राधान्य दिया जाता था, उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि ये मनुष्य ऐसा प्राणी है जो कर्म बंधन में नहीं फंस सकता। बुद्धिमान तो प्राणी भी है। एक छोटा सा पक्षी ऐसा उसका घर बांधता है कि अपन सीमेंट और इसके घर बांधो तो भी ये गिर जाते हैं, है ना। बॉम्बे में तो कितने घर ऐसे बैठे बैठे गिर जाते, पता ही नहीं चलता, बिना हवा पानी के बैठे बैठे गिर जाते। परंतु उसका घर चाहे कितना तूफान आए, बारिश आए, कुछ नहीं, कितना बुद्धिमान है ना। कम बुद्धिमान है पक्षी? बुद्धिमान है पक्षी भी, प्राणी भी बहुत सारे बुद्धिमान है। कुत्ता देखो कितना बुद्धिमान है, चोर को कैसा पकड़ता है। हम पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। बुद्धिमान वो भी है, परंतु डिफरेंस क्या है? मनुष्य जो है कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, और प्राणी जो है कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। परंतु यदि मनुष्य भी यदि मुक्त नहीं होता है कर्म बंधन से, तो वो क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा, द्विपाद पशु, दो पैर वाला पशु, है कि नहीं? सोफिस्टिकेटेड एनिमल, प्रभुपाद महाराज कहते हैं सोफिस्टिकेटेड एनिमल, है कि नहीं? तो इस प्रकार से पशु, इस श्लोक में कहा है, इस पंक्ति में कहा है, प्रजा, प्रजा अर्थात वे समस्त जीव जंतु मनुष्य सब, परंतु मनुष्य को विशेषकर प्रजा कहा गया है, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता। तो कर्म बंधन से तो कैसे मुक्त हो सकता है? यज्ञ कर्म के द्वारा। अब कौन से कर्मों को यज्ञ कर्म समझें, बताइए। यज्ञ कर्म करके कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, कौन से कर्म यज्ञ कर्म समझें? मान लो मैं रोज ऑफिस में जाता हूं, तो क्या करूं? ऑफिस में जाते से यज्ञ करूं? क्या करूं? शास्त्र विधि का पालन करके, शास्त्र विधि का पालन करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने कर्म करना है कि नहीं? शास्त्र विधि का पालन करते हुए, भगवान के नाम का चिंतन करते हुए अपने कर्म करना, उसको क्या कहते हैं? यज्ञ कर्म। अच्छा, यज्ञ कर्म तो असुर भी करते थे, नहीं करते थे? भगवान के नाम का चिंतन करते थे और शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक करते थे, करते थे कि नहीं? तो वो तो असुर भी करते थे। हाँ, क्या? सकाम भाव, इंद्रिय तृप्ति, भोग सुख, इस भाव से वो करते थे, विधि पूर्वक करते थे, शास्त्र को अपने लिए उपयोग में लाते थे शास्त्र का पूरी तरह से मेरे स्वयं के लिए उपयोग में लाना। शास्त्र भगवद गीता में कहा है, क्या कहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो, ऐसा भगवद गीता में कहा है। कहीं पढ़ा है आपने, किसी ने पढ़ा है? तो कैसे भगवद गीता में कहा है? यह असुरी प्रवृत्ति है। शास्त्र को अपने जरूरत के अनुसार, शारीरिक सुख को भोगने के लिए शास्त्र को इस प्रकार से प्रस्तुत करना। तो असुरगण शास्त्र के विधि को अपने ही सुख भोग के लिए उपयोग में लाते थे। परंतु शास्त्र का उपयोग किस लिए करना चाहिए? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। असुरगण क्या करते थे? सकाम कर्म, कर्म बंधन में फंसने के लिए, अर्थात विधि पूर्वक शास्त्रों के अनुसार नाम स्मरण करते हुए आप यदि ऐसे कर्म करते हो जो आपको बंधन में डाल दे, तो वो कौन है? असुर है। हमको असुर नहीं होना है, हमको क्या होना है? हमको मनुष्य कम से कम होना है, है कि नहीं? देव वगैरह भी नहीं होना है, क्या होना है? मनुष्य होना है। और मनुष्य जन्म में ही भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए मनुष्य बनना बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट है? देव बनना डिफिकल्ट है? मनुष्य बनना आसान है कि नहीं? क्या करना पड़ता है बताइए आप, मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बस हो गया। और भगवान का स्मरण करना पड़ता है। कुछ डिफिकल्टी है? ये मनुष्य बनने का एक तरीका है, क्या? चार नियमों का पालन और भगवान के नाम का चिंतन, हो गया मनुष्य। कितने मनुष्य इस संसार में है? नियम का पालन करते हैं तो कैसे मनुष्य है? तो वो कौन है? सोफिस्टिकेटेड एनिमल। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस श्लोक के तात्पर्य में यदि आपने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है, क्या बताया गया है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, पढ़िए पूरा उसका अर्थ।
इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान के उनके पार्षद सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे।
कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधशः। इस कलयुग में जो लोग ऐसे हैं पर्याप्त बुद्धिमान, बुद्धिमान है सुमेधशः, वो क्या करते हैं? भगवान की उनके पार्षदों के साथ, उनके पार्षदों के संग क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल संकीर्तन करने की आवश्यकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह विशेष कृपा है कि उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को यहां पे प्रस्तुत किया, इस धराधाम पे प्रत्येक जीव को अर्पण कर दिया कि आप संकीर्तन यज्ञ करो, बैठे बैठे चलते फिरते जहां हो, जहां कहां हो वहां पे यत् करोषि यदश्ना, जहां जो कर रहे हो, जैसा भी हो, जो भी स्थिति में, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, कुछ भी करो, यज्ञ कर सकते हो। संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। उस कलयुग के लिए हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। इस कलयुग में अन्यथा दूसरी कोई गति नहीं है, हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। यदि हम इस प्रकार से यज्ञ नहीं करेंगे तो हमारे हाथ पैर कट जाएंगे, पंगु हो जाएंगे, अधु हो जाएंगे, है कि नहीं? तो कर्म बंधन में फंसना नहीं है, इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। और इस कलयुग का यज्ञ है, महायज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम जप। एक आगे के शब्द, आगे शब्द आता है प्रजापति ही। प्रजापति का कार्य है, क्या कार्य है प्रजापति का? प्रजापति का कार्य है कि ऐसी प्रजा या ऐसी संतान उत्पन्न करे और उन्हें जीवन की उचित शिक्षा प्रदान करे, ताकि वो कभी भी कर्म बंधन और भव बंधन में न फंसे। ये प्रजापति की, प्रजापति का विशेष कार्य है। क्या? ऐसी प्रजा, प्रजापति तो ऐसी प्रजा उत्पन्न, अथवा प्रजापति अर्थात प्रजा उत्पन्न करने वाला, ऐसी प्रजा उत्पन्न करे उसको इस प्रकार से शिक्षा दे सके, किस प्रकार से? कि वो प्रजा कर्म बंधन में न फंसे या भव बंधन में न फंसे। जो ये कार्य कर सकता है वही प्रजापति बन सकता है, है कि नहीं? दूसरा कोई बन सकता है? यह कार्य कौन कर सकता है? ऐसी उचित शिक्षा कौन किसको दे सकता है? यह उचित शिक्षा है, यह उचित शिक्षा जो दे सकता है तो प्रजा, प्रथम प्रजापति कौन है? भगवान विष्णु। ब्रह्मा तो भगवान विष्णु से आए ना, तो उन्होंने ऐसी प्रजा अर्थात ऐसे संतान को उत्पन्न किया और उस संतान को अर्थात ब्रह्मा को क्या बताया? ब्रह्मदेव को, ब्रह्मदेव को संपूर्ण ज्ञान उनके हृदय में प्रेरित कर दिया ब्रह्मदेव को। और ज्ञान प्राप्त करके फिर ब्रह्मदेव क्या बोलने लगे? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। वो कहे कि कर्म को बंधन, कर्म बंधन से टूटना हो तो एक ही तरीका है, केवल भक्ति। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। ये आदि पुरुष गोविंद है, आपको हमारा प्रणाम। क्या उचित शिक्षा दी भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को, देखो है कि नहीं? फिर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में वो कहते हैं, चूंकि तुमने अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की है, अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की तुमने इच्छा प्रकट की है, तुम इसमें असफल नहीं होगे। तुम इस प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करोगे, ऐसे ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे दिए भगवान विष्णु। और फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, ब्रह्मा जी की संतान हुई, 10 पुत्र हुए। सारे के सारे कौन निकले? सारे विरक्त हो गए। सर्वप्रथम उनको चार कुमार ब्रह्मा जी को अपेक्षा थी, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, विवाह करेंगे, वैवाहिक जीवन में बंध जाएंगे, और जैसा मैं कर्म बंधन में फंस गया हूं वैसे मेरे बच्चे भी फंस जाएंगे, और कितना ऐसा संसार चक्र चढ़ेगा। परंतु जो चार कुमार, उसे ये, मैं ये नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हमको कर्म बंधन में फंसना नहीं है, हम विरक्त हो जाएंगे डायरेक्ट संन्यास और हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो गृहस्थ है वो भक्ति में नहीं लग सकते, गृहस्थ भी भक्ति में ही लग सकते और लगते ही है, ब्रह्मा जी भी तो स्वयं गृहस्थ ही थे ना सब। तो इस प्रकार से नारद मुनि रुद्र सभी कैसे, सभी ने विरक्ति, सब विरक्त हुए। दक्ष प्रजापति, उनका क्या हुआ? दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। उनको लगा चलो ये तो कुछ काम करेंगे, मेरी इच्छा है इस प्रकृति को, इस सृष्टि को बढ़ाना, तो ये दक्ष जो है ये मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, इसलिए वो दक्ष थोड़े भयभीत हो गए। दक्ष क्या भयभीत हो गए, उन्होंने सोचा कि ये सब विरक्त ही विरक्त हो रहे हैं, अभी मैं ऐसा कुछ प्रार्थना करता हूं, तप करता हूं कि मुझे पुत्र नहीं कन्या ही प्राप्त हो जाए, तो कन्याओं को थोड़ी ना कुछ विरक्ति या तपस्या करनी होगी, तो कन्याओं से संसार की निर्मिति हो सकती है। तो इस प्रकार से उनके उनसे कन्याएं प्राप्त हुई, उनकी एक कन्या थी सती, 16 कन्याओं में से एक कन्या सती थी, उन सती का विवाह शिवजी से हुआ और इस प्रकार से वो कथा हम सब जानते हैं। फिर शिवजी को सती का सती हो गई है ना, फिर प्रॉब्लम हो गया, फिर यही दक्ष प्रजापति छठवें मन्वंतर में फिर दक्ष बन के आ गए है ना, फिर मनु बन के आ गए है ना। संपूर्ण भागवतम तीसरे स्कंद से पढ़ेंगे आप तो सबको कथा है, प्रचेता पुत्र के रूप में आए, प्रचेता के पुत्र 10 प्रचेता, उसमें से जो 10वें प्रचेता थे उनके पुत्र के रूप में ये आ गए यही दक्ष। इस बार दक्ष ने क्या किया, 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। सृष्टि का निर्माण करना था, ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण करना था, 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन क्या है, जब उस समय देखिए जो विषय है वो विषय यह है कि ट्रेनिंग देना चाहिए बचपन से। क्यों ट्रेनिंग नहीं देते, क्योंकि सब माता सारे माता पिताओं को डर लगता है कि हमारा पुत्र जो है सन्यासी बन गया तो क्या करेंगे, इस्कॉन में चला गया तो क्या करेंगे, इस्कॉन से दूर रहो, इस्कॉन में मत जाओ, कोई भी दूसरे मंदिर में जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बहुत से माता पिता बोलते हैं अपने पुत्रों को, है कि नहीं। इस्कॉन वाले क्या करते हैं, ब्रह्मचारी बना देते हैं। तो इसी प्रकार से ये दक्ष के जो प्रथम 10,000 पुत्र थे उस समय क्या था, जैसे ही पुत्र प्राप्त हुआ उनको गुरुकुल में या साधु संगों साधु के या गुरुओं के संग में उनको रखा जाता था और वहीं पूरे ब्रह्मचर्य जीवन का ट्रेनिंग वो लेता था, उनमें पूरा धर्म के आधारित जीवन जो जीते थे उसका पूरा शिक्षा वहां पे वो प्रदान करते थे गुरु, और एकदम पक्के सारे प्रकार के धर्म शास्त्र नीति शास्त्र अर्थशास्त्र सारे प्रकार के शास्त्र वहां समझ जाते थे, दान तप शुचि सत्य दया ये सब विषय उनको उस गुरुकुल में उस समय सिखाए जाते थे। अब इनके पुत्र है हुए तो पुत्र हुए तो तुरंत इन्होंने क्या किया, नारद मुनि के पास भेज दिया, भाई यहां से ये बहुत ही ब्रह्मर्षि है बहुत दिव्य ज्ञान है अपने पुत्रों को सिखाएंगे। उन्होंने 10,000 पुत्रों को ट्रेनिंग दिया तो वो सब क्या हो गए, ब्रह्मचारी हो गए। बड़े परेशान हो गए क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं इस बार तो छोड़ देता हूं, सब विरक्त हो गए कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार 10,000 पुत्रों का निर्माण किया उत्पन्न किए 10,000 पुत्र। अब दूसरी बार भी गड़बड़ हो गई, दूसरी बार भी इन्होंने नारद मुनि के पास भेजा अपने पुत्रों को, दूसरी बार भी नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने कुछ नहीं किया, केवल उनको जो शास्त्र सत्य है उसका ज्ञान दिया, सारे के सारे विरक्त हो गए। तीसरी बार अपने पुत्रों को नारद मुनि के पास भेजने के पहले दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दे दिया, श्राप दे दिया कि तुम एक जगह नहीं टिक पाओगे, पूरे संसार में भ्रमण करते रहोगे, तुम्हारे पैर को चक्र लग जाएगा चक्री लग जाएगी, चक्री अर्थात घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, श्राप दे दिया। तो नारद मुनि ने इस श्राप को आशीर्वाद के रूप में ले लिया, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसके कारण मैं क्या कर सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं। तो भक्त का ये विशेष, कहीं पे भी प्रचार के लिए जाते कभी और भक्तों को कुछ अच्छी बातें समझाते हैं लोगों को तो बहुत सा विरोध होता है, बहुत लोग कहते अरे वो हरे कृष्ण वाला ऐसा है वैसा है आ जाता है आ जाता है। इस प्रकार के विरोध करने से क्या होता है, भगवान के नाम का प्रचार हो जाता है विरोध के माध्यम। अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी के ऊपर कोर्ट केसेस कर दिए थे, कोर्ट में केसेस, क्या ये क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो इससे हुआ क्या, सारे टेलीविजन पे प्रभुपाद जी छा गए, कौन है ये ब्रेन वॉश करने वाले और कितना आसानी से कर देते हैं। कई वर्षों तक कई संगठनाओं ने और पूरी जितनी सरकारें अभी तक भी सारी सरकारों ने करोड़ों मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स खर्चे किए, किस लिए, ये हिप्पी लोगों को व्यसन मुक्त करने के लिए, लेकिन सारे प्रोग्राम उनके फेल हो गए। और प्रभुपाद जी ने क्या ब्रेन वॉश किया, तो बिना खर्चे से उनका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। तो कोर्ट में प्रभुपाद जी ने यह प्रूव कर दिया, कोर्ट ने भी प्रशंसा की। देखिए भक्तों को प्रताड़ित की करने का प्रयास किया गया तो क्या हुआ, भगवान के नाम का प्रचार हुआ। इसी प्रकार से नारद मुनि को इन्होंने श्राप दिया कि आप एक जगह नहीं खड़े रहोगे, आप घूमते रहोगे। तो नारद मुनि कहे वाह 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 बहुत बढ़िया बात है, सारी जहां जाऊंगा वहां क्या कहूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चाहे श्राप मिले चाहे आशीर्वाद मिले, हम जहां जाएंगे वहां क्या कहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए माया का दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास। श्राप मिले आशीर्वाद मिले कुछ भी मिले, मैं क्या करूंगा, भगवान के नाम का चिंतन करूंगा, हरे कृष्ण का नित्य जप करूंगा। ये भक्त का भाव, ये नारद मुनि का भाव है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सोचा अब ये बहुत हो गया, इस बार फिर दक्ष प्रजापति ने क्या किया, फिर से कन्याओं को जन्म दिया और फिर उन कन्याओं के अनेकों प्रकार से विवाह कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो प्रजापति है, ये प्रजापति का कर्तव्य क्या होता है कि प्रजा या संतान का इस प्रकार से लालन पालन पोषण करे कि वो आगे जाके उनके कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। फिर दूसरा शब्द यहां पे आता है, अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ द्वारा तुम विशेष प्रकार से पूजन करो। भगवान क्या कह रहे हैं, अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ कर्म से तुम विशेष प्रकार से पूजन करो। यहां पे इस संदर्भ में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि तुम यज्ञ करो, यहां पे यज्ञ का अर्थ है तुम युद्ध कर्म करो, तुम क्या करो, युद्ध करो, तुम्हारे लिए युद्ध कर्म करना ही यज्ञ कर्म करने के जैसा है। तुम युद्ध करोगे तो उसको यज्ञ ही माना जाएगा, इसलिए हे अर्जुन तुम यज्ञ करो। भगवान जो कह रहे तुम इसलिए युद्ध कर्म करो, इसका अर्थ क्या है, भगवान यहां पे कह रहे हैं कि तुम इसलिए यज्ञ करो, अर्जुन को यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं। किस प्रकार से अर्जुन का युद्ध कर्म यज्ञ कर्म हो जाएगा, भगवान कह रहे यज्ञ कर्म करो, और भगवान यह भी कह रहे कि तुम यदि युद्ध कर्म करोगे, युद्ध करोगे तो उसको यज्ञ कर्म ही माना जाएगा। क्यों ऐसा होगा, युद्ध कर्म को यज्ञ कर्म क्यों माना जाएगा, सर्वप्रथम तो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कर्म कर रहे हैं। जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, यज्ञ किस लिए किया जाता है, स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः, अर्थात जो कुछ भी है भगवान, ये सब कुछ जो भी है ये स्वाहा आपको है कृष्ण, ये सब आपके आपकी प्रसन्नता के लिए, मेरी नहीं, इदं नमः, ये सब मेरा मेरे लिए नहीं, ना ही मेरी प्रसन्नता के लिए। इदम कृष्णाय, यह सब जो है भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम आहुति देते हैं ना, तो यज्ञ कर्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण की या भगवान की प्रसन्नता है कि नहीं। तो यदि युद्ध करेंगे अर्जुन, अर्जुन युद्ध करेंगे तो अधर्म का नाश होगा, और अधर्म का नाश होने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं है कि नहीं। तो भगवान अर्जुन को जो कह रहे युद्ध कर्म अर्थात यज्ञ कर्म, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मैं भगवान कह रहे मेरी प्रसन्नता के लिए तुम करोगे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन युद्ध करेंगे। राजा बनने के लिए अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, राजा बनने के लिए दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं। और अर्जुन का धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म है। जो अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वो स्वधर्म पालन करने की वजह से उसको यज्ञ कर्म माना जाता है। तो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध कर्म को यज्ञ कर्म इसलिए कहा गया है। किस लिए कहा गया है? स्वधर्म का पालन कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो हम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए, मनुष्य धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा और नाम रुचि वैष्णव सेवा जीव दया, सबसे महत्व के तीन है। जीव दया, जीवों के ऊपर दया, सबसे पहली दया अपने स्वयं पे करनी चाहिए। अपने स्वयं पे ही दया नहीं करते, मैं कौन हूं, मैं यहां कैसे आया हूं, मुझे कहां जाना है, इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो स्वयं पे ही कहां दया कर रहे हैं। दूसरों के तो ऊपर बाद में करेंगे, पहले हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर दया करनी। ये तीन बातें जो है वो मनुष्य कर सकता है। तो जो लोग यज्ञ के द्वारा इस श्री कृष्ण को प्रसन्न करके यज्ञ के अवशेष को भोगते हैं, यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करके यज्ञ के जो अवशेष अर्थात प्रसाद को जो भोगते हैं, वे श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं, या श्री कृष्ण उनको प्राप्त होते हैं। प्राप्त करना है कौन? श्री कृष्ण को प्राप्त करना है कि श्री कृष्ण की माया को प्राप्त करना है? दुर्योधन ने क्या पर प्राप्त किया था और अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। तो श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, और उस कर्म से जो कुछ भी मिलता है उसको प्रसाद रूप में अर्थात कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, है कि नहीं। वो जो इस प्रकार से जीवन यापन करता है उसको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। और हमारे जीवन का उद्देश्य भी तो यही है ना कि भगवान की प्राप्ति। बाकी सारे वस्तुओं की, इसको सारे निर्जीव वस्तुओं को एकत्रित करके क्या प्राप्त होने वाला है? कुछ प्राप्त होने वाला है? हाथ पैर तो कटने ही वाले हैं। कितना भी मटेरियल इकट्ठा करो, जितना मटेरियल इकट्ठा करोगे उतना बंधन में फंसोगे, और जितना बंधन में फंसोगे वो मशीन में हाथ फंस जाएंगे ना, जितना बंधन में फंसोगे उतना अगले जीवन हमारे पशु पक्षियों के बिना हाथ पैर वाले, हाथ वाले प्राप्त हो जाएंगे। तो कितना भी मटेरियल एकत्रित करो, कितना भी सुख का भोग करो, अल्टीमेटली हाथ तो कटना ही है। परंतु यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं तो उस कर्म से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है, उस फल को कृष्ण की कृपा समझकर उसको स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार से जीवन यापन करते 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 हमको एक दिन कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, और नहीं तो हमारे हाथ कट सकते हैं, चॉइस हमारे पास है। लेकिन तो इसी प्रकार से आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में महाराज नाभि, नाम सुना है, महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी, उन्होंने यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया उन्होंने? उन्होंने संकीर्तन यज्ञ, दोनों ने एकत्रित बैठ के इतना ध्यान पूर्वक संकीर्तन यज्ञ किया, एकदम सारे भव बंधन या कर्म बंधन की बातों को भूलकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और ध्यान करते हुए यज्ञ किया, संकीर्तन यज्ञ। और मन में इच्छा क्या थी यज्ञ करते थे? हे भगवान, आप ही हमारे पुत्र के रूप में आ जाओ, आप हमको चाहिए, हमको आपको प्राप्त करना है भगवान। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? संकीर्तन यज्ञ किया। भगवान प्रसन्न हो गए, उनको कहे कि ठीक बात है, मैं आपका पुत्र बन के आ जाता हूं, क्योंकि आपने यज्ञ किया, आपको पुत्र नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया था, आपको पुत्र नहीं है, मैं आपका पुत्र बन के आ जाता हूं। और संकीर्तन यज्ञ करने से उनको पुत्र प्राप्त हो गया, कौन? महाराज ऋषभदेव, है ना, भगवान ऋषभदेव, भगवान श्री कृष्ण के अवतार। तो यज्ञ करने से, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के नाम का चिंतन स्मरण करने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, किसी भी रूप में, पुत्र के रूप में हो सकते हैं या कोई अन्य रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में भगवान साक्षात श्री कृष्ण के रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। लेकिन भगवान हमारी केवल इष्ट कामनाओं की पूर्ति करते हैं, ये बात ध्यान रहे, कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन है? भगवान के लिए यज्ञ करने से, भगवान के नाम का चिंतन करने से भगवान हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इच्छाएं पूर्ण करते हैं। परंतु कौन सी इच्छा है? इष्ट इच्छा है। अनिष्ट इच्छाएं भगवान पूर्ण नहीं करते हैं, अनिष्ट कामनाओं को भगवान काट देते, चाहे हमको कितना भी, हम कितना भी कहे भगवान हमको ये चाहिए, भगवान हमको ये सब कुछ चाहिए, परंतु यदि वो हमारे लिए अनिष्ट होगा भगवान उसको पूर्ण नहीं करेंगे। इष्ट कामनाएं जो है, इष्ट कामनाएं अर्थात हमारे इस जीवन के लिए भी और आने वाले सारे जीवन के लिए जो कामना कल्याणकारी है उसको इष्ट कामना कहते हैं। तो हमारे लिए जो इष्ट है जन्म जन्मांतर, वही कामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं, अनिष्ट कामनाओं को भगवान कुचल देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए इष्ट कामना रखते हुए, भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए, भगवान के नाम का चिंतन करते हुए युद्ध करो। हम सबको युद्ध ही तो करना है, वी आर फाइटिंग, वी आर फाइटिंग नो, प्रभुपाद कहते वी आर ऑल सोल्जर्स, हम सब सैनिक है। सैनिक क्या करता है? अलर्ट रहता है। सैनिक सोते रहता है क्या करता है सैनिक? अलर्ट रहता है, अलर्ट, बी अलर्ट। इसके प्रति? समय के प्रति अलर्ट रहिए, अपने मन और ईगो को, अपने मन और अहंकार को रोज चेक करते रहिए, चेक चेक चेक, ये अलर्टनेस है कि नहीं? तो हम सैनिक है, वी आर सोल्जर्स, हमको अलर्ट रहना है। किसके प्रति? कहीं गलती से भी हमारे अंदर अनिष्ट इच्छाएं तो नहीं आ रही है, कहीं मेरा मन तो नहीं भटक रहा है, कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन एक थर्मामीटर लेके आइए, रोज उस थर्मामीटर से अपने को चेक करते जाइए। कौन सा थर्मामीटर है? एक थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर है हरि नाम का जप। यदि भगवान का नाम जप करने में रुचि नहीं है, जबरदस्ती कर रहा हूं, इंटरेस्ट नहीं है, पर प्रभुपाद ने बोला, गुरु महाराज ने बोला, भक्त लोगों ने बोला, बहुत प्रेशर है इसलिए 16 पूरी कर देता हूं, रुचि नहीं है, तो ये थर्मामीटर है, समझना चाहिए मैं अलर्ट नहीं हूं, मेरे अंदर अनिष्ट इच्छा है कहीं तो भी चुपचाप बैठी हुई है, भले ही जागृत नहीं है पर चुपचाप है। और मैं तो सैनिक हूं, सैनिक क्या करता है? उस इच्छाओं को सैनिक तो मारेगा। सैनिक का काम क्या है? मार देना, तुरंत शत्रु सामने दिखा उसको खत्म कर दो। तो मैं तो सैनिक हूं, मुझे दिख गई है, मारो, खत्म करो अनिष्ट इच्छाओं। लेकिन यदि अनिष्ट इच्छा है, अहंकार आ रहा है, मन विचलित हो रहा है, अस्थिरता बढ़ रही है, तो ये कैसे समझे? हरि नाम में यदि रुचि नहीं है तो समझना चाहिए कि ये सारे के सारे शत्रु मेरे अंदर एकदम वो बड़ी हाई पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरा डिफीट हो सकता है। इसलिए हम सैनिक है, बड़ी शक्ति से ऐसे शत्रुओं का सामना करना चाहिए। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? अर्जुन युद्ध करो, यही यत्न कर्म है, युद्ध करो, ये यज्ञ कर्म है। किसके साथ युद्ध कर रहे हैं हम? करना है हमको हमारे अंदर की अनिष्ट इच्छाओं के साथ, हमारे अहंकार के साथ, हमारे मन के साथ हमको युद्ध करना है कि नहीं? तो युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलो प्रभुपाद की जय।